लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी करके विशाल स्तर पर मानवीय सहायता आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक खाद्य पदार्थों व ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि को बहुत तेज कर दिया है, जिससे दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन को गेहूं का गढ़ कहा जाता है। ये दोनों देश दुनिया के अधिकांश देशों में गेहूं की जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन जारी युद्ध की वजह से गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य असुरक्षा की गहराती चिंता के बीच यूक्रेन और रूस से बाकी दुनिया के लिए खाद्य व उर्वरक निर्यात सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसियों ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूएन ने जरूरतमंद देशों के लिए अनाज और उर्वरक का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र संकट समन्वयक अमीन आवाद के अनुसार यूक्रेन में काला सागर स्थित बंदरगाह पर फंसे अनाज और रूस से उर्वरक की आपूर्ति के विषय में बातचीत जारी है। संकट समन्वयक अमीन आवाद कह रहे थे कि दुनिया भर में 1.5 अरब लोगों को खाद्य सामग्री और उर्वरक की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेगी और जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा। यूक्रेन में फिलहाल 1,57,00,000 लोगों को मानवीय सहायता व संरक्षण की जरूरत है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने युद्ध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की आवाजाही पर नजर रखी है और इनमें वापस देश आ रहे लोग भी हैं, मगर वापस लौटने वालों की एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके घर और संपत्ति बर्बाद हो चुके हैं और अब उन्हें नए सिरे से बनाए जाने की जरूरत है।
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के समापन पर वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने और न्यायोचित व टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वास्तविक संकल्प लिए जाने की पुकार लगाई गई है। उन्होंने आगाह किया है कि मानवता और वैश्विक कल्याण पर विशाल जोखिम मंडरा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह पर्यावरण की रक्षा के लिए जिन वादों को किया गया था उन्हें पूरा नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूएन प्रमुख ने गुरुवार को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि वर्ष 1972 के बाद से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए केंद्रित प्रयासों में सफलता मिली है और इनमें ओजोन परत का बचाव भी है, मगर उन्होंने पृथ्वी के समक्ष मौजूद 13 पर्यावरणीय खतरों, जलवायु व्यवधान, प्रदूषण और जैव विविधता हानि पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पृथ्वी की स्वाभाविक व्यवस्था हमारी मांगों से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
Today I urge countries to embrace the human right to a clean, healthy environment for all people everywhere, especially poor communities.
आज मैं तमाम देशों से सर्वजन के लिए और सर्वत्र स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण के मानवाधिकार को अपनाने का आग्रह करता हूं, विशेष रूप में निर्धन समुदायों, महिलाओं और लड़कियों व आदिवासी जन, युवजन और आने वाली पीढ़ियों के लिए। वैश्विक पर्यावरण और मानवता के भविष्य को बचाने की खातिर हमें अनुलेखन का तरीका बदलना होगा जिसमें प्रदूषण और अपशिष्ट को पुरस्कृत किया जाता है।
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने इन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिनिधियों से कार्रवाई की पुकार की है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को हर किसी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण के बुनियादी मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने बिजली और भोजन पकाने के लिए प्रयोग में होने वाले स्वच्छ ईंधनों व टेक्नोलॉजी की सार्वभौमिक उपलब्धता की दिशा में प्रगति को धीमा किया है और यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप आगे और भी ज्यादा झटके लग सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तालाबंदियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और वित्तीय संसाधनों को खाद्य व ईंधन कीमतें सुलभ बनाए रखने की तरफ मोड़ने के जैसे उपायों ने टिकाऊ विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति की प्रगति को प्रभावित किया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
बुधवार को प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय दुनिया भर में लगभग 73 करोड़ 30 लाख लोगों को बिजली मयसर नहीं है और लगभग 2 अरब 40 करोड़ लोगों को अब भी भोजन पकाने में ऐसे ईंधनों का प्रयोग करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। प्रगति की मौजूदा रफ्तार के अनुसार लगभग 67 करोड़ लोग वर्ष 2030 तक बिजली से वंचित रहेंगे। ये निष्कर्ष ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के वर्ष 2022 के संस्करण में प्रस्तुत किए गए हैं जो टिकाऊ विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति के वैश्विक प्रयासों की निगरानी करती है। इस लक्ष्य में सर्वजन के लिए वर्ष 2030 तक आधुनिक ऊर्जा की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान है। कोविड-19 महामारी के दौरान तालाबंदियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और वित्तीय संसाधनों को खाद्य व ईंधन कीमतें सुलभ बनाए रखने की तरफ मोड़ने जैसे उपायों ने टिकाऊ विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति की प्रगति को प्रभावित किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है क्योंकि इसके कारण वैश्विक तेल व गैस बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है और ऊर्जा मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि किसी स्थानीय महामारी की गैर मौजूदगी वाले 30 देशों ने मंकी पॉक्स से 550 से ज्यादा पुष्ट मामलों की खबर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये संक्रमण कुछ समय से मौजूद रहा हो और इसकी मौजूदगी के बारे में पता ही न चला हो। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
डॉक्टर टेड्रोस ने स्वास्थ्य एजेंसी के जिनेवा स्थित मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि जांच पड़ताल जारी है, मगर अनेक देशों में एक साथ मंकीपॉक्स की अचानक मौजूदगी से ऐसा लगता है कि ये संक्रमण कुछ समय से मौजूद रहा होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया ने आगाह करते हुए प्रभावित देशों से चौकसी का दायरा बढ़ाने का आग्रह भी किया है।
So far, most cases have been reported among men who have sex with men. These communities are working hard.
मंकीपॉक्स के ज्यादातर मामले समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों में सामने आए हैं, तो ये समुदाय अपने सदस्यों को जोखिमों के बारे में सावधान करने और रोकथाम उपायों के बारे में सूचित कर रहे हैं, मगर हम सभी को कलंक की मानसिकता का मुकाबला करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा क्योंकि ये कलंकित मानसिकता न केवल गलत है बल्कि ये मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से वंचित कर सकती है जिससे संक्रमण को रोकना और भी कठिन होगा।
WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस के शब्द।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
ज्ञान वचन से भर दो मुझे। ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
ज्ञान वचन से भर दो मुझे।
पावन आत्मा
अंतर्यामी। पावन आत्मा शांति प्रदाता, सुख शांति का वरदो मुझे।
पावन आत्मा शांति प्रदाता, सुख शांति का वरदो मुझे,
सुख शांति का वरदो मुझे, सुख शांति का वरदो मुझे,
सुख शांति का वरदो मुझे।
पावन आत्मा शांति प्रदाता, सुख शांति का वरदो मुझे,
सुख शांति का वरदो मुझे।
पावन आत्मा शांति प्रदाता,
पावन आत्मा शांति प्रदाता।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। यूरोपीय कैथोलिक परिवारों के संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को वेटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। संत पापा ने संघ की 25वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाइयां अर्पित की और खेद व्यक्त किया कि इस समय यूरोप के अनेकानेक परिवार यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। संत पापा ने याद किया कि परिवार और पारिवारिक नेटवर्क शरणार्थियों का स्वागत करने में सबसे आगे रहे हैं, खासकर लिथुआनिया, पोलैंड और हंगरी में। उन्होंने यूरोपीय कैथोलिक परिवार संघ की घोषणा में आवाज मिलाते हुए कहा कि माता पिता अपनी राष्ट्रीयता के परे युद्ध नहीं चाहते हैं, परिवार शांति की पाठशाला है। यूरोपीय कैथोलिक परिवारों के संघ के सदस्यों से संत पापा ने कहा, परिवारों के प्रति अपनी दैनिक प्रतिबद्धता में आप दोहरी सेवा करते हैं, यूरोपीय संस्थानों में परिवारों की आवाज उठाते हैं और पूरे यूरोप में परिवारों के नेटवर्क बनाने के लिए काम करते हैं। यह मिशन हमारे द्वारा अनुभव किए जा रहे धर्म सभा पद के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कलीसिया परिवारों का एक वृहत परिवार है। यूरोप में और विशेष रूप से इटली में घटती जन्म दर पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए संत पापा ने कहा, प्रजनन की इस गरीबी और परिवार के सौंदर्य की भावना के बीच एक बहुत करीबी संबंध है। उन्होंने कहा, विवाह की सामाजिक गरिमा का साक्ष्य ठीक इसी माध्यम से प्रेरक बन जाएगा, ऐसा साक्ष्य जो आकर्षित करता है। 5 वर्ष पूर्व दिए अपने संदेश की पुनरावृत्ति करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं आपको पारिवारिक नेटवर्क के जन्म और समेकन को बढ़ावा देने के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह एक अनमोल सेवा है, क्योंकि ऐसे स्थानों, सभाओं और समुदायों की आवश्यकता है जहां दंपत्तियों और परिवारों का स्वागत किया जा सके और उन्हें कभी अकेला न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और वे सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, हम पीढ़ियों के बीच एकजुटता के बिना सतत विकास की बात नहीं कर सकते और यह एकजुटता एक संतुलन की परिकल्पना करती है, लेकिन आज हमारे यूरोप में इस संतुलन की कमी है। प्रजनन की दृष्टि से यूरोप वृद्ध हो चला है, वह एक ऐसा यूरोप है जो स्थिरता के बारे में बात करने का जोखिम नहीं उठा सकता और एकजुटता में रहने के लिए तेजी से संघर्ष कर रहा है। जेरूसलम स्थित विश्व नर संहार स्मरण केंद्र याद वाशिम के अध्यक्ष दानी दयान ने गुरुवार को वेटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर साम्यवाद विरोधी लड़ाई में सहयोग करने हेतु उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। वेटिकन में संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात के उपरांत वेटिकन रेडियो से बातचीत में याद वाशिम के अध्यक्ष दानी दयान ने संत पापा को साम्यवाद विरोधी भावनाओं को पराजित करने से संबंधित उनके मिशन में एक महान सहयोगी और मित्र निरूपित किया। जेरूसलम स्थित याद वाशिम विश्व नर संहार स्मरण केंद्र को शिक्षा, प्रलेखन और अनुसंधान के अंतिम स्रोत के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है। संत पापा फ्रांसिस ने 2014 में जेरूसलम की तीर्थ यात्रा के दौरान याद वाशिम स्मरण केंद्र की भेंट कर श्रद्धा अर्पित की थी। इस अवसर पर अपने प्रवचन में उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें मनुष्यों के दुष्कर्मों पर शर्मिंदा होने की कृपा प्रदान करें। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कि संत पापा से मुलाकात करने वाले श्री दयान याद वाशेम के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि पापा बेरगोलियो की तरह ही उनका जन्म स्थल भी बॉयनेस आयरस है तथा संत पापा के साथ स्पानी भाषा में विचारों का आदान प्रदान करना अत्यंत आनंदपूर्ण रहा। अध्यक्ष दयान ने कहा कि उन्होंने संत पापा पियूस 12वें संबंधी वैटिकन अभिलेखागार के हिस्से को खोलने के लिए संत पापा फ्रांसिस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। और तलब है कि मार्च 2020 में वैटिकन प्रेरितिक अभिलेखागार में सुरक्षित परम धर्म पीठ के कई अन्य दस्तावेजों सहित संत पापा पियूस 12वें अर्थात सन 1939 से लेकर 1958 तक के दस्तावेजों को विद्वानों द्वारा परामर्श के लिए खोल दिया गया था। श्री दयान ने कहा कि जब उन्होंने संत पापा को यहूदी नरसंहार की प्रासंगिक अवधि के दस्तावेजों को शोधकर्ताओं के लिए खोलने के लिए धन्यवाद दिया, तब उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि वैटिकन अभिलेखागार में सुरक्षित इन दस्तावेजों को उजागर करना न्याय का कार्य था। भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की लोक धर्मियों को समर्पित समिति ने आतंकवाद विषय पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम की योजना बनाई है। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में समिति ने राष्ट्र की धर्म निरपेक्षता को बरकरार रखने पर बल दिया है। समिति के उपाध्यक्ष वीसी सेबेस्टियन ने कहा, धर्म निरपेक्षता की महानता को हर कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए और किसी को भी धर्म निरपेक्षता के ऊंचे सिद्धांतों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 6 जून को नाइजीरिया में आतंकवादियों द्वारा ख्रिस्तियों के नरसंहार के मद्देनजर केरल कैथोलिक धर्माधीक्षीय समिति के एक बयान के बाद वीसी सेबेस्टियन का उक्त बयान प्रकाश में आया। बयान में कहा गया, दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादी हमलों की बढ़ती संख्या राष्ट्रों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाने वाला मामला है। हमारे देश में हुई कुछ हालिया घटनाओं से पता चलता है कि हम भी ऐसे खतरों से अछूते नहीं रहे हैं। आतंकवाद की ऐसी हरकतें देश के शांतिप्रिय नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्र में बने आतंकवाद के खतरों के प्रति सचेत कराते हुए सेबेस्टियन ने कहा कि जिस नेतृत्व को लोगों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए वह आतंकवाद के खिलाफ साहसिक कदम उठाने में बुरी तरह से विफल रहा है। उपाध्यक्ष सेबेस्टियन ने बताया कि भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की लोक धर्मी समिति 15 अगस्त को आतंकवाद के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए सभी आंदोलनों और संगठनों से अनुरोध किया जा रहा है। यह अभियान पूरे देश में शांति और अहिंसा का संकल्प लेगा। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु काम कर रहे विश्वव्यापी संगठन सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि उत्तरी सूडान के डारफूर में भूखमरी से मरने वाली दो किशोरियों का किस्सा उस चरम संकट का एक नाटकीय संकेत है जो जल्द ही 1,80,00,000 लोगों को प्रभावित करेगा। 9 जून को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में सेव द चिल्ड्रन ने उक्त बात कही। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि सूडान में तीव्र भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या सितंबर माह तक दुगनी हो जाएगी। सेव द चिल्ड्रन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वह सूडान में मानवीय और लोकोपकारी सहायताओं को प्राथमिकता दे तथा संकट से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों के लिए तत्काल आवश्यक भोजन और दीर्घकालिक विकास सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था करे। इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।